नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान आशिक बाबेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलोवेव जोराबेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया है और अनिश्चित तथा अस्थिर वैश्विक परिवेश में प्रतिभा और कौशल के आदान प्रदान का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में ये बात कही। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सर्गेई लावरोफ कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक प्रमुख परियोजना है। उन्होंने कहा कि इस परमाणु संयंत्र के लिए नई बिजली इकाइयों के निर्माण में सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
People to people connect.
श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
The visit to the 4 European countries.
4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
पीपल टू पीपल कनेक्ट।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आयोजित उद्योग जगत के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और संस्थागत भागीदारों ने भारत के गहन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लिया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जो IIT, IISc और अन्य अग्रणी संस्थानों से लेकर द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों तक की असाधारण प्रतिभाओं द्वारा संचालित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गए प्रमुख अधिकारियों में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला तथा स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक शामिल हैं। मेटा, वीजा, जेपी मॉर्गन, बोइंग और कारगिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। कल से शुरू हो रही 2 दिन की वार्ता में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्वता के बीच ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। ये द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक और तकनीकी मुद्दों के महत्व को रेखांकित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस के 100 से अधिक ड्रोन ने आज यूक्रेन के कुछ इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन में रेलवे बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों को निशाना बनाया है। इन हमलों में मध्य नीप्रो और उत्तर पूर्वी खार्कीव क्षेत्रों में यूक्रेन के आवासीय और रेलवे बुनियादी ढांचे, दक्षिण ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह बुनियादी ढांचे और मध्य पोल्टावा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष के बीच विश्वास व्यक्त किया था कि रूस और यूक्रेन जल्द ही युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण अब समाप्ति की ओर है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और 2 अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। रूस ने भारत को आश्वासन दिया, मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद सभी समझौतों को पूरा करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए पेचिंग पहुंचे। स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसन हुआंग सहित कई शीर्ष सीईओ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।